आप राजयोग शिक्षिका और एक अनुभवी योगिनी हैं जिन्होंने पिछले 65 वर्षों से दुनिया भर में लाखों लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है और वर्तमान समय में आप ब्रह्मा कुमारीज विश्वविद्यालय की जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड और ब्रह्मा कुमारीज के यूरोपियन सेंटर्स के आप डायरेक्टर हैं। इसके साथ ही आप इस ज्ञान सरोवर जहां हम बैठे हैं इतने सुंदर कैंपस में, आप इस ज्ञान सरोवर एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड के सीनियर डायरेक्टर भी हैं और आप जर्मनी में ब्रह्मा कुमारीज के नेशनल कोऑर्डिनेटिंग ऑफिस एंड रिट्रीट सेंटर जो मॉरिंगन में है आप उसके भी डायरेक्टर हैं। इतनी सब जिम्मेवारियों के बीच भी दीदी हमारे बीच में उपस्थित हैं, ये हम सबका बहुत सुंदर भाग्य है। दीदी ने लगभग 100 देशों की यात्रा कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मानव विकास, ध्यान और आंतरिक शक्तियों के विषय पर व्याख्यान दिए हैं। आपकी वाणी में इतनी सहजता और गहराई है कि आप पूर्व और पश्चिम के बीच एक सुंदर आध्यात्मिक सेतु बन चुके हैं, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में जाकर इस इंडियन नॉलेज को शेयर दीदी ने किया। और 1942 में उत्तर भारत में दीदी का जन्म हुआ और फिर उन्होंने अल्प आयु में 16 साल की आयु में ही दीदी ने एक स्कूल में एज ए हेड मिस्ट्रेस अपनी सेवाएं देना प्रारंभ किया। आप सोच सकते हैं कितनी ब्रिलियंट माइंड रहा होगा दीदी का। और आपने फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन करते हुए इस ईश्वरीय ज्ञान को समझा और अपना जीवन मानवता की सेवा के लिए समर्पित किया। 1974 में आप लंदन गए और वहां पर आपने कई देशों में ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्रों की स्थापना की और 1996 में आप जर्मनी गए और तब से लेकर पूरे यूरोप में मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी की लाइट आप फैला रहे हैं। 2018 में आपको भारत गौरव पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और 2023 में 81 ईयर्स की एज में आपको ब्रह्मा कुमारी संस्था का जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी नियुक्त किया गया। तो ये हम सभी के लिए फिर से गौरव की बात है कि दीदी हमारे बीच में है, हमारे छोटे बड़े सभी प्रश्नों का समाधान आज दीदी करेंगे। दीदी आपका पुनः पुनः बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैंने पीछे और साइड विंग्स में बैठे उनसे रिक्वेस्ट है कि सेंट्रल विंग में और आगे की तरफ आ जाएं ताकि दीदी भी आपको अच्छे से देखें और आप भी सिर्फ सुने ही नहीं पर उनके इतने शक्तिशाली आध्यात्मिक वाइब्रेशंस भी फील कर पाए।
आप सभी के कई सारे प्रश्न हमारे पास पहुंचे हैं तो कुछ प्रश्न मैं दीदी आपसे पूछना चाहूंगी।
मैं प्रश्न से पहले सबका स्वागत करना चाहूंगी क्योंकि अभी सभी इकट्ठे भाई बहन बैठे हैं, अपने ही परिवार में आए हैं, अपने घर में आए हैं और अब तो ऐसा ही लगता है आप यहाँ ही रहते थे, ऐसा थोड़े कि आप कोई आए हैं। तो ऑफ कोर्स सुन रहे हैं, 3 दिन हो गए तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछने चाहिए, उठने चाहिए। क्यों? कि ये एजुकेशन है, ये सिर्फ सत्संग के लिए आप नहीं आए हैं। सत्संग आपने बहुत किए, कथाएं आपने बहुत की, भक्ति आपने बहुत की, पर हमेशा डर रहा प्रश्न नहीं पूछो। प्रश्न पूछेंगे भगवान नाराज हो जाएंगे, आपका भगवान में विश्वास नहीं है। परंतु अगर हमको सीखना है, जानकारी चाहिए तो नेचुरल क्यूरोसिटी होगी, पूछना होगा। मुझे याद है मैं इसमें 7 साल की थी, मेरे को कथा सुनने का बहुत शौक था तो मैं स्कूल से शाम को सीधा ही कथा कर सुनने गई। तो उस दिन गणेश जी की कथा चल रही थी और हमेशा गाते भी हैं, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। उसी में ही आता है चूहे की सवारी। तो मैंने पंडित जी से पूछा, पंडित जी एक बात पूछूं। कहाँ पूछो। मैंने कहा वो बेचारा चूहा तो हाथी के नीचे आके मर जाता होगा, क्या नया चूहा रोज आता था। पंडित जी का तो रूप ही बदल गया। कहा छोटी सी लड़की भगवान की बातों पर क्वेश्चन करती है, डिस्टर्ब करने आई है। अगर त्रिशंकु ने प्रश्न पूछा था उसको ऊपर फेंक दिया, वो अब तक लटक रहा है, क्योंकि भगवान पर सब डाउट किया तो ऊपर लटक जाओगी अगर क्वेश्चन पूछोगी तो। मेरी दादी बड़ी नाराज हो गई मेरे से, लड़की तू घर का नाम बदनाम करेगी, बेइज्जती कर दी उनकी। मैंने कहा नहीं, मैं तो पूछना चाहती थी, जो मेरे मन की बात थी मैं वो पूछना, स्कूल में मैं पूछती हूँ कोई प्रश्न नहीं होता है तो हमेशा बहुत कथाएं सुनी, बहुत मूर्तियां पूजी, परंतु प्रश्न पूछने की आज्ञा नहीं थी तो मन की बात मन में ही रह गई। पर यहाँ मैं जब ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आई तो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ प्रश्न पूछने की छुट्टी है, जरूर पूछिए। क्यों? कि अगर आप क्वेश्चन आपके हल नहीं हुए तो आपको जो फायदा पूरा होना चाहिए वो नहीं होगा, इसलिए अच्छा है क्वेश्चन निकाल के रखे हैं। मुझे मालूम है आत्मा के बारे में भी क्वेश्चन मेरे भी बहुत थे, परमात्मा के बारे में थे, कर्मों के बारे में थे, ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बारे में थे, बहुत क्वेश्चंस थे। हमने जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, नजदीक आते गए, प्रश्न का उत्तर मिलने लगा, प्रसन्नचित रहने लगे। खाली क्वेश्चन मार्क है प्रसन्नता नहीं होती, उत्तर मिलता है तो प्रश्न प्रसन्नता में बदल जाता है, प्रसन्न चित्त बन जाते हैं, हर्षित मुख रहते हैं। इसलिए खुशी की बात है कि आपने इनसे प्रश्न ले लिए हैं, आराम से पूछो।
दीदी जैसे आपने अभी कहा कि मूर्ति पूजा करते रहे पर प्रश्न नहीं पूछ पाए, तो अभी किसी ने यही प्रश्न पूछा है कि अभी जब तक हम यहाँ नहीं आए थे तब तक तो हम मूर्ति पूजा ही कर रहे थे, तो अभी यहाँ आके देखा कि निराकार परमात्मा है, परमात्मा के विषय में सेशन भी हुआ, तो अभी हम क्या करें फिर? अभी वो मूर्ति पूजा कंटिन्यू करें कि, क्योंकि हमारा मन तो उसी में ही लगा है।
मूर्ति पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि हम उनसे कुछ वरदान लेवें, उनसे कुछ शक्ति भरे। तो अभी मूर्ति पूजा की मने नहीं है, पर ये पढ़ाई है आप चैतन्य मूर्ति बनने की, नारी लक्ष्मी बने, पुरुष नारायण बने। आप अपने आप को मनुष्य से देवता बनाएं। कभी उन्होंने जिनकी मूर्तियां बनी हैं साकार में थे ना, जिनकी मूर्तियां वो भी यहां इसी लोक के रहने वाले थे, उनकी मूर्ति पूजी जाती है, बाकियों की नहीं पूजी जाती। श्री लक्ष्मी श्री नारायण वो भी कपल थे, राम सीता भी कपल थे, उनकी पूजा होती है। आज शादी होती है कहते हैं घर में लक्ष्मी आई, लक्ष्मी आई, नारायण जी आए होंगे तो लक्ष्मी आएगी ना, नारायण लक्ष्मी होगी तो नारायण मिलेगा, पर कौन लक्ष्मी जैसा है? आप अपने आप से पूछो, क्या हम सचमुच श्री लक्ष्मी जैसे गुण हमारे अंदर हैं? तो मन नहीं है, हमारा लक्ष्य है हमको स्वयं ऐसा बनना है। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है, मनुष्य से देवता बनना, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना। अभी आप देखेंगे श्री लक्ष्मी नारायण जी सप्त नारायण के लिए कहते हैं ना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। अभी नारायण जी का बर्थडे आप कभी नहीं मनाते, श्री कृष्ण का बर्थडे मनाते हैं। नारायण जी का बचपन नहीं देखा, श्री कृष्ण जी का बुढ़ापा नहीं है, क्या मतलब है इसका। और उनको ही कहते हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण मुरारी सप्त नारायण। फिर उनके सामने चार हाथ आरती करेंगे, जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा, क्या मतलब है। आरती किया, पूजा किया, अर्थ क्या है इसका। चार हाथ वाला कोई मनुष्य होता है, वास्तव में वो प्रवृत्ति में रहते, गृहस्थी में रहते, नारी लक्ष्मी और पुरुष नारायण। इसीलिए उनकी विष्णु जी को की आरती में बोलेंगे जय लक्ष्मी रमणा लक्ष्मी नारायण। तो दो हाथ श्री लक्ष्मी जी के हैं, दो हाथ श्री नारायण जी के हैं, और एक मत है। रावण के 10 सिर हैं, मत भेद है। रावण पंडित होते भी उसकी दशहरे पर खुश होते हैं, उनका एफिजी जला के देवताओं की मूर्ति पैर के नीचे आ जावे, समझेंगे हमने अविज्ञा कर दी। तो देवता का मतलब दिव्यता जीवन में लाना। पूजा करना तो बाहर का एक एक्शन है, पर दिल से ऐसा बनने की यह पढ़ाई है। ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, और विद्यालय का पढ़ाई का लक्ष्य होता है, और यहाँ का लक्ष्य है हर इंसान नारायण बने, हर एक नारी लक्ष्मी बने, घर में रहते कमल फूल समान रहे। अब इतनी बड़ी मतलब माता तो लक्ष्मी, वो कमल के फूल पर बैठेगी तो कमल तो टूट जाएगा। क्या सचमुच कमल पर बैठी थी? पर ये तो आर्टिस्ट की भाषा है कि जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर कीचड़ से न्यारा होता है, उसको मिट्टी टच नहीं करती, पानी टच नहीं करता। हम घर में रहें, हम प्रेम से चलें, पर मोह का कीचड़ टच न करें। मोह और प्रेम में अंतर है। मोह वाले में जहां मोह होगा वहां डर होगा, चिंता होगी, परेशानी होगी, टेंशन होगी, कंट्रोल होगा, अधिकार ज्यादा रखेंगे। और प्रेम एक वर्चू है। तो देवताओं की महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, उनमें विकार नहीं है। उनके सामने कहते हैं विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। अब उनमें अगर विकार हो तो उनसे पाप विकारों को हटाने की प्रेयर क्यों करें? वास्तव में वो गृहस्थी में रहते हुए उन्होंने अपने जीवन को ऐसा पवित्र बनाया। तो इसीलिए जीवन, बेशक आपके घर में मूर्ति चित्र रखो बेशक, पर आप कंपेयर करो कि आपकी दृष्टि उन जैसी है, आपके पास मुस्कराहट उन जैसी है, आपकी यूनिटी आपस में ऐसी है। लक्ष्मी नारायण की मूर्ति में ऊंचा नीचा नहीं है, दोनों साथ खड़े हैं, हार्मनी है। तो इसलिए चैतन्य मूर्ति आप बनेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा, पर उसके लिए तो पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी ना।
बहुत सुंदर दीदी, आपने हमें बताया कि हमें चैतन्य मूर्ति बनना है। दीदी इसी के साथ एक प्रश्न है, जैसे आपने कहा कि जीवन दोनों की एक जैसी हो, लक्ष्मी नारायण जैसी, तो कई भाई बहनों का एक प्रश्न है कि यहाँ जब वो आए तो उनको पता चला कि यहाँ का एक नियम है ब्रह्मचर्य की पालना, तो एक प्रश्न तो है कि क्या ये घर गृहस्थ में रहते हुए संभव है, और इसी के साथ दूसरा प्रश्न है कि सभी ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी?
पहली बात है, बिल्कुल संभव है। अगर आपने प्रेयर किया विषय विकार मिटाओ और मन कथा सुनी अथवा गीता जी में पढ़ा, भगवान ने कहा है काम महाशत्रु है, काम क्रोध नरक के द्वार हैं। अगर आप नरक वाला जीवन जीना चाहते हैं तो विकारों का जीवन जियो। अगर घर को मन को मंदिर बनाना चाहते हैं, घर को आश्रम बनाना चाहते हैं, सृष्टि को स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो पवित्र जीवन जियो। मुश्किल नहीं है, महानता है। ये सन्यासी स्त्री को विधवा बना के जंगल में चले जाते और उनको हम महात्मा कहते हैं। क्यों नहीं घर में रहते अपने जीवन को पवित्र बनाए? परंतु ये स्कूल है, स्कूल में सब नंबर वन नहीं लेते, पढ़ाई में सब डिग्री नहीं लेते। जिनको पढ़ कर के कुछ लक्ष्य है वो अपने जीवन को बना लेते हैं, फोर्स किसी को नहीं है। ये तो अपने मन की समझ बुद्धि में निश्चय जीवन का लक्ष्य है, महान बनना। पवित्रता वास्तव में हमारा धर्म है। ब्रह्मचर्य खाली ब्रह्मचर्य की बात नहीं है, परंतु उसके साथ साथ हमारी वृत्ति में कितनी पवित्र भावना हो, हमारी दृष्टि में, हमारे बोल में, हमारे कर्म में वो शक्ति हो। तो ऐसा बनने के लिए आप देखेंगे पहले सरस्वती स्वरूप है, श्री लक्ष्मी जी का रूप। सरस्वती का मतलब यही है विद्या की देवी। जितनी जितनी आपके पास समझ आती जाएगी आप हंस की सवारी गुणग्राही बनते जाएंगे। हंस मोती चुगता है, बगुला पत्थर चुगता है। आपके पास निर्णय शक्ति आ जाएगी, मुझे अपने जीवन को डिसिप्लिन में रखना है। फोर्स की बात नहीं है, ये तो अपने अंदर समझ की बात है, लक्ष्य की बात है। तो उसके लिए ये शक्तियों के हाथ में, हर एक देवता के हाथ में चार चीजें दिखाई है। स्वादर्शन चक्र, गदा, कमल का फूल और शंख। क्या कोई फैशन था? क्या फैशन था? हर देवता के हाथ में वो ही है। और शक्तियों के हाथ में आठ हाथ है, तलवार भी है, त्रिशूल भी है, गधा भी है, मशाल भी है, और शीतल जल का मटका भी है, तो पंखा भी है। तो बैलेंस चाहिए लाइफ में और इसका मीनिंग समझने की जरूरत है, तो फिर पवित्रता मुश्किल नहीं है। स्वदर्शन चक्र। अब भगवान ने किसी को हिंसा की क्या? किसका गला काटा क्या? राक्षस कोई और तो नहीं है? मनुष्य आत्मा ही राक्षसी स्वभाव वाले हैं। रामायण में मनुष्य ही तो डेविल थे, मनुष्य ही देवता है। कंस कोई मनुष्य तो था, रावण मनुष्य ही तो था, ताड़का स्वरूप नखा मनुष्य आत्मा ही तो थी, कैकई मनुष्य ही तो थे, सुमित्रा भी मनुष्य थी, कौशल्या भी मनुष्य थी, सीता भी मनुष्य थी। वो पूजनीय मूर्त बन गए। तो स्वदर्शन चक्र यानी आत्मा को पहले अपने आप का दर्शन करना है, अपनी पहचान चाहिए। मैं कौन हूँ, किसकी संतान हूँ? परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। तो रोज मंदिर में जाकर के फाइल रख के आते हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। और फिर गंग विकार कैसे मिटेंगे? झूठी फाइल रखी है क्या? एवरी डे जाके आरती करते हैं जय जगदीश हरे, परंतु क्योंकि वो खुद का लक्ष्य नहीं है, किसी ने लिखा हमने गीत गा लिया, कहे शिवानंद स्वामी, वो शिवानंद स्वामी की तरफ से हम प्रेयर कर रहे हैं हमारे विकार मिटाओ, या अपनी तरफ से प्रेयर कर रहे हैं कि हमारे विकार मिटाओ। तो विकार विकृत रूप है, गुण का अवगुण बन जाता है। वास्तव में जैसे आज मैं बात कर रही थी किसी से कि पानी है, शीतल है, प्रेम एक पवित्र शक्ति है, पर मोह कष्ट देने वाला है, दुख देने वाला है, मोह ममता विकार है, विकृत रूप हो गया। इसके कारण हम अपने को शक्तिशाली नहीं समझते, क्योंकि हमारे पास देह की मिट्टी मिक्स हो गई है। मिसाल के तौर पर यह पानी है, यह ठंडा पानी पीने जैसा है, मैं पीऊंगी तो स्वस्थ रहूंगी, यही पानी में थोड़ा सा मिट्टी डाल दो, मैं इसको पीऊं तो मैं हेल्दी रहूंगी, अपोजिट रिजल्ट। और मिट्टी डाल दो, ये ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाएगी। और मिट्टी डालो, ये मेरा कपड़ा साफ करता है, पर तो ये मेरा कपड़ा मैला कर देगा मिट्टी डालने से। और मिट्टी डालो, इसका फ्लो स्लो हो जाएगा। और मिट्टी डालो, ये कीचड़ बन जाएगा। नाम वही प्रेम मोह बन जाता है, तो हम उसका रिजल्ट बंधन है। तो वास्तव में यहां सिखाया जाता है कि आप अपने आप को जब समझेंगे, अपने आत्मा के महत्व को समझेंगे, तो मनुष्य देवता बनेंगे। तो जिनको बनना होगा वो बनेंगे, पढ़ाई स्कूल में होती है, जिनको फर्स्ट नंबर लेने हैं, डिग्री लेनी है, वो पढ़ते हैं, जिनको नहीं लेनी है वो घूमते, स्कूल में नहीं जाते, बहाना स्कूल का करते। तो ये तो पढ़ाई है, जो पढ़े सो बने, जो नहीं पढ़े तो नहीं, तो सारी सृष्टि तो बनेगी भी नहीं, वैसे ही पता है। पर मैं तो बनूं, दुनिया की दुनिया कैसे बढ़ेगी, वो तो बढ़ ही रही है, पर मैं तो अपने जीवन को दिव्य बनाऊं ना। तो इसलिए समझने की बात है, और अपने संकल्प शक्ति को बढ़ाने की जरूरत है, और उसके लिए अपने अंदर पहले लक्ष्य क्लियर हो, तब लक्ष्मी, लक्ष्य जैसा है वैसा जीवन बनता है।
दीदी अगला क्वेश्चन यही है कि जैसे अभी हम इस एजुकेशन विंग के प्रोग्राम में आए हैं, और ब्रह्मा कुमारी इसके सभी प्रोग्राम जो होते हैं उसमें कोई फी स्ट्रक्चर नहीं है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है, हम किस तरह से ये फाइनेंसेस भी मैनेज करते हैं, और ब्रह्मा कुमारी संस्था का पर्पस क्या है इस तरह के प्रोग्राम्स रखने का?
पर्पस है विश्व कल्याण, पर्पस है आत्मा को राइट डायरेक्शन मिले, पर्पस है जीवन में सुख शांति और पवित्रता आवे। ये स्पिरिचुअल सोशल सर्विस है, इसमें जो जो भाई बहन सेवा करते हैं वो कोई फीस नहीं, वो कोई चार्ज नहीं करते, पैसा किसी को नहीं मिलता है, क्योंकि कोई नौकरी थोड़ी कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं। तो जो भी सेवा करने वाले हैं वो खुशी से अपना जीवन विश्व सेवा में लगाते हैं, बाकी जो इतना खर्चा होता है बराबर, तो ऊपर से तो नहीं आ जाएगा ना, किसी पेड़ पर नहीं उगेगा, कोई कुआं खुद करके नहीं आ जाएगा, जरूरत तक चाहिए। तो समझदार अपने आप ही समझ सकता है कि कुछ सहयोग तो जरूर चाहता होगा ना, तो यह वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है, कभी भी किसी से चार्ज करने की बात नहीं। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन में अपनी अपनी कैपेसिटी अनुसार, अपनी अपनी भावना अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार सहयोग देते हैं। ये ट्रस्ट है, वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट, उस ट्रस्ट में फिर जिनको भी जमा करना होता है वो करते हैं, और बिल्कुल सिस्टेमेटिकली क्लैरिटी से गवर्नमेंट को पता हो कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, किसमें खर्च हो रहा है। तो ये तो परिवार है, हम समझते हैं हम भगवान के बच्चे हैं, तो घर को चलाने वाले कौन होते हैं? बच्चे ही तो घर को चलाते हैं। तो सब जो आते हैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ, वो अपना फर्ज समझते हैं कि हमको जितना हमारी कैपेसिटी है उसमें हम कुछ परसेंटेज ईश्वरीय सेवा में लगाएं। ये प्लान बनते हैं, उसका बजट बनता है, उसमें वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन होता है। कोई जो आते हैं वो भी वॉलंटरी अपनी भावना से दे के जाते हैं, कभी किसी से मांगने का तो क्वेश्चन ही नहीं है। भगवान तो दाता है और ये तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, तो इसलिए किसी से मांगने की तो बात ही नहीं, भगवान दाता बना रहा है, भिखारी नहीं बनाता, इसीलिए।
बहुत अच्छी क्लैरिफिकेशन हम सभी को मिली। दीदी एक क्वेश्चन और है, आजकल रिलेशंस में कई बार ऐसा होता है कि हम किसी पर ट्रस्ट करते हैं, वो हमारा ट्रस्ट तोड़ देते हैं, फिर हम सीखते हैं, ऐसे सेशन सुनते हैं तो हमें ट्रस्ट करना चाहिए, गुड विशेस रखनी चाहिए, फिर वो कुछ हमारे साथ गलत करते हैं और फिर उससे पूरे परिवार को ही नुकसान हो रहा होता है, तो फिर क्या करें ऐसे में हम?
नहीं तो पहले तो मन की भावना में जब हम उनके अवगुण पर फोकस करते हैं तो उनके पास ताकत नहीं होती अपने अवगुण को बदलने की। ट्रस्ट हम रखते हैं परंतु साथ साथ प्रेम की भावना कि मुझे इनको मदद करनी है कमजोरी को खत्म करने की, विश्वास कर रखना है कि बेशक किसी ने भूल की है पर भूल की है मैंने क्षमा किया, परंतु क्षमा करके मुझे अहंकार आया मैंने तेरे को माफ किया तुम फिर भी वही कर रहे हो, तो मेरा ईगो उनकी कमजोरी को ठीक नहीं करेगा। मेरी मर्सी मेरा प्यार मेरा कर्तव्य क्या है? उनको अपलिफ्ट करना ना कि उनको डिप्रेस करना। तो क्षमा का मतलब क्या है, फॉरगिवनेस का मतलब क्या है? हम उनको नहीं कुछ दे रहे, पहली बात तो है किसी ने हमारी इंसल्ट की, किसी ने भूल की तो मेरे पर उसका इफेक्ट ना आए, मैं दुख लूं नहीं, समझो इस आत्मा का संस्कार है। इस पर एक छोटी सी कहानी है कि एक बारी महात्मा जी, एक महात्मा इस वाटर स्ट्रीम के पास मेडिटेशन कर रहे थे, लोग वॉक के लिए गए, पिकनिक के लिए गए हुए थे, तो उसने क्या देखा कि एक बिच्छू पानी में गिर गया। फौरन उसने महात्मा जी ने बिच्छू को हाथ में पकड़ा, बिच्छू ने डंक मार दी, नेचुरल बात है। महात्मा जी चुपचाप गए, झाड़ियां थी आसपास, वहां से एक कुछ पत्तियां लिया, कुछ मतलब हर्ब्स निकाली, हर्ब्स को रब करके वो जो डंक था उसको निकाला, ठीक होके फिर आके बैठ गए। बाय द टाइम बिच्छू फिर पानी में गिरा, तीन बार ऐसे हुआ। लोगों ने कहा महात्मा जी आप तो समझदार हो, आप बिच्छू को मार क्यों नहीं देते हो? उन्होंने कहा नहीं ये बिच्छू मेरा टीचर है। कहा बिच्छू आपका टीचर है? हाँ बराबर मेरा टीचर है, इनसे मैंने तीन सबक सीखे हैं, तीन लेसन सीखे हैं। कहा आप इसकी भाषा जानते हो क्या? तीन लेसन सीखे हैं, वो कौन से तीन लेसन सीखे हैं? तो उन्होंने कहा पहला लेसन था कि मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, मुझे महसूस हुआ कि मेरी भावना, मेरी अंदर के हृदय की फीलिंग न केवल मनुष्यों को बचाने की है पर जीव जंतुओं के लिए भी नेचुरल मेरी भावना बचाने की है। अब मुझे ये ख्याल नहीं आया कि ये तो तर अपने आप ही स्विम कर लेगा, परंतु मुझे समझ में आ गया कि इसका डंक जो है वो इसका नेचर है और मेरी नेचर क्या है बचाने की, तो मेरा स्वमान जागृत हुआ। दूसरी बात का दूसरा लेसन क्या सीखा, उसने कहा कि क्षमा यानी जो अच्छा करते हैं उनके साथ अच्छा करना कोई बड़ी बात नहीं। Forgive those who harm you, जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं उनको माफ करो। तो मैंने ये समझा इसने मुझे कष्ट दिया, परंतु इनका तो संस्कार ही यही है, तो मैंने अपने आप को संस्कार ये रखा कि मुझे ये भावना जागृत थी तो माफ कर दिया। तीसरा लेसन क्या है, Forgive and forget। वो कहते हैं फॉरगिव तो कर सकते हैं पर महात्मा जी फॉरगेट कैसे करेंगे, आपको काटा आप फॉरगेट कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा सीक्रेट ये है कि मैंने वो जो डंक मारा था उसने उस पेन को रिमूव कर दिया, वो पेन अपने अंदर नहीं रखा, तो फिर मुझे याद करने की जरूरत ही नहीं है कि बिच्छू ने मुझे डंक मारा है। तो अपने आप में वो पावर चाहिए अपनी एटीट्यूड को चेंज करने की, विजन को चेंज करने की, तो भावना को चेंज करने की, तो तब हम उनको सुधार कर सकते हैं। नहीं तो वो जिद्दी बन जाएंगे और सिद्ध करेंगे तुम तो मुझे समझते ही ऐसे हो, मैं करता रहूंगा ऐसे, फिर हम दुखी होते हैं। हमारा बेटा हमारे कुल के लिए दाग लगा रहा है, मेरा पोतरा धन को वेस्ट कर रहा है, पर प्यार से मैं सिखाऊं टीचर बन के नहीं, बताऊं इसमें कितना नुकसान है, एक बारी नहीं मानेंगे। संघ का प्रभाव बड़ा जबरदस्त है, तो मैं तो उनको कुछ प्यार की बूंदें दूं, सिंपैथी रखूं, तो क्या है कि सुधार होता है विश भावना से, सुधार मार से नहीं होता है, सुधार प्यार से होता है। इसलिए आत्मिक भाव रख करके आत्मा को सिखाना है, शरीर को नहीं। अभी क्या है कि जब हम किसी को बोलते रहते हैं नहीं सुनता, तो कहते हैं दीवारों से बात कर रहा हूं क्या, सुनते नहीं हो, तो सचमुच देखे जाए तो दीवार से ही तो बात कर रहे हैं, बॉडी को ही तो देख रहे हैं, आत्मा को तो देखा ही नहीं। संस्कार तो आत्मा में है, बदलना तो आत्मा को है। तो पहली बात है अगर उनको बदलना है तो उनको यह आत्मा है, हाँ कमजोर है, इसको ईश्वरीय शक्ति चाहिए। अन्न शुद्ध खाए तो मन इनका शुद्ध होवे, बार बार टोके नहीं, पहले विशेषता को याद कराएं, अच्छी बातें जो की हैं वो याद कराएं और फिर बताएं ये अच्छा नहीं लगता कि तुम्हारे में तुम हीरा हो तुमको दाग लग जाए, नहीं तुम स्वच्छ हो तुमको मैला हो जाए कपड़ा। उनकी विशेषता के भर के उनके शक्ति भरो और फिर उनको इलाज करो।
विशेषता देखेंगे तब हम सामने वाले को सहज ही माफ कर सकेंगे। थैंक यू दीदी। दीदी आजकल जैसी दुनिया है उसमें थोड़ा बहुत डिसऑनेस्टी और झूठ बोलना ये सब बहुत कॉमन सी बातें हो गई है, तो अभी थोड़ा बहुत चलता है या कैसे करें हम मैनेज, क्योंकि दुनिया में रहते हैं तो इन सब के बिना तो काम ही नहीं चल रहा है।
ये थोड़ा बहुत जो होता है उससे संतुष्टि होती है, खुशी होती है, स्वमान जागता है, क्योंकि अपनी कमजोरी है तो इतना मिलता नहीं है जो रॉन्ग रास्ता लेना पड़ता है। पर अगर आत्मिक स्थिति में आप स्थित हैं तो थोड़े में आप संतुष्ट हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं, परंतु जब कंपेयर करते हैं दूसरों से, उसके पास कार है मेरे पास भी कार होनी चाहिए, उनके पास बंगला है मेरे पास भी होना चाहिए, तो वास्तव में मैं सही तरीके से जो पुरुषार्थ करके पहले अपने पुरुषार्थ से जो मिलता है वो वास्तव में उसकी वैल्यू बहुत है। रॉन्ग तरीके से आता है वो हमारे बच्चे खाते हैं, उनकी बुद्धि मलिन होती है। इसीलिए सच्चाई, आखिर तो सच्चाई सच्चाई है, डिसऑनेस्टी डिसऑनेस्टी है, चोरी चोरी है, चाहे कख की चोरी हो चाहे लख की चोरी हो, बुराई बुराई है। ये नहीं कि थोड़ी सी बुराई, थोड़ी सी बीमारी है कोई बात नहीं, चलो जरा बहुत थोड़ा बहुत तो बीमार रहना ही चाहिए, ऐसा होता है क्या कभी? इसीलिए पुरुषार्थ अगर लक्ष्य अच्छा है तो हम एक दो का सुधार कर सकते हैं। कोई ये समझे सारे थोड़े ऐसे बनेंगे, सारे ना बने, मैं तो बनूं, मेरे पास संतुष्टि है, मेरे पास स्वमान है, मेरे पास सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरे पास हर एक आत्मा के लिए शुभ भावना है, तो करना ही नहीं पड़ेगा रॉन्ग एक्शन, जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
थैंक यू दीदी। दीदी एक और क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो सभी हमारे सामने बैठे हैं सभी टीचर्स हैं, कहीं ना कहीं सभी टीचर्स बैठे हैं दीदी, तो ये सब कहीं ना कहीं पढ़ाते हैं, युवाओं के साथ रहना होता है, तो युवाओं को कैसे प्रेरणा दें कि वो भी अध्यात्म के मार्ग पर चले?
हमारे पास तो हजारों के अंदाज में युवा है, युवक बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम, उनको उनकी विशेषताओं को आगे ठीक यूज करते हैं तो बिल्कुल बचपन से लेकर के प्रेरणा मिली। और युवकों की ऐसा ही जैसे ये कॉन्फ्रेंस की है, ऐसे कॉन्फ्रेंस होती है, अभी भी लास्ट में दिसंबर में थी, फिर से होने वाली है, मतलब एक साल में दो बार युवक मिलते हैं, तो आपस में उनकी उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है, उनकी विशेषताएं क्या हैं। ऑर्डिनरी युवक हम नहीं हैं, हम युवा हैं, नव युग के युवक हैं, हमको कुछ नवीनता करनी है, और वो दिव्यता के आधार से ही होती है। चरित्र निर्माण है तो सब कुछ है, वेल्थ इज गॉन लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो पहले ये ध्यान दिलाया जाता है कि कैरेक्टर कैसे सुधारे, उसमें खान पान का भी मतलब होता है, क्या खाते हैं, संग का भी असर होता है, घर के वातावरण का भी असर होता है, तो ये सब सिखाया जाता है कि बच्चों के साथ कैसे चलो। जो आपके बच्चे युवक हो गए हैं उनको बच्चा नहीं समझो, उनको फ्रेंड समझो, उनके साथ उनकी वैल्यू की विशेषता को रखो, महत्व दो उनको, उनके अंदर स्वमान जागृत करो, तो वो बराबर यहाँ इस प्रकार से भी एक शिक्षा केंद्र में हर जगह युवक ऐसे हैं, खास करके युवकों के प्रोग्राम अहमदाबाद में हमने चंद्रग्रहण करते थे,
ब्रह्मा कुमारी के हर एक सेवा केंद्र पर अधिकतर जगह पर युवाओं के लिए भी विशेष प्रोग्राम रहते हैं, वहां भी हम उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं। दीदी एक प्रश्न आपके जीवन से भी है कि आज ही हमें पता चला आपने 1996 में जब आप जर्मनी गए तो वहां दीदी ने 60 इयर्स की एज में जर्मन लैंग्वेज सीखी ताकि जर्मनी के लोगों को ये ज्ञान सुना सके। तो दीदी आपके अंदर वो कौन से संकल्प थे कि लैंग्वेज सीखना एक बहुत इंटेलेक्चुअल काम है और इस उम्र में?
क्योंकि मेरी भावना थी मैं इसको स्पिरिचुअल सोशल वर्क करूं, ये स्पिरिचुअल सेवा है, और कोई भी अपने मन की बात प्राइवेट बात किसी दूसरे से ट्रांसलेशन करावे ये पसंद नहीं है। उनके मन की भाव को समझने के लिए मुझे उनकी भाषा सुननी होगी, उनके मन की बात सुननी होगी। तो जिस दिन पहले दिन मैं गई तो पूछा गुड मॉर्निंग क्या होता है, रोज दो चार सेंटेंस पूछती थी, वो नोट कर लेती थी, जहां पर भी गई ट्रैवल करते पढ़ा पता न चलना शुरू हुआ कि ये है। एक बुक लिया बच्चों का किताब का, तो बच्चों की किताब से यानी पहली सबक क्या है ऐसे पढ़ना सीखा। अपने आप रोज 2 घंटा देती थी उसको सीखने के लिए, स्कूल में नहीं गई। जब वो मैं स्कूल में गई तो उन्होंने कहा कि तुमने तो ऑलरेडी एडवांस हो गई, तो अब स्कूल में क्या करोगी ज्वाइन करके। तो ये था रोज रोज रात को इंग्लिश मुरली, हिंदी मुरली और जर्मन, तीनों का 3 सेंटेंस उधर सेंटेंस पढ़ा। हिंदी में भाव क्या है, इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है, क्योंकि जर्मन से इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता था। तो वो दोनों रोज पढ़ के सोती थी, स्वप्न में भी फिर ऑटोमेटिकली मेरे पास वो कुछ ही समय के बाद मैं क्लास कराने लग गई, जर्मन में क्लास, जर्मन में लेक्चर, जर्मन में फोन कॉल्स। उनको इंग्लिश पसंद नहीं आती। ऐसे ही स्पेनिश स्पेन में गई तो स्पेन में स्पेनिश भाषा थोड़ी थोड़ी सीखी। ऐसे तो 100 कंट्री में जा रहा हुआ सब कंट्री की भाषा नहीं सीखी, परंतु कुछ भाषाएं सीखी। मतलब ध्यान दिया कि जब तक मैंने इनके मन के भावों को नहीं समझा मैं इनको मदद नहीं कर सकती। सीख लिया आपने, मदद मिल गई परमात्मा से।
दीदी प्रश्न तो बहुत सारे हैं, पर मैं एक और प्रश्न पूछना चाहूंगी। आपकी लौकिक शरीर की आयु 82 इयर्स है, इस बीच में जरूर शारीरिक कोई ना कोई व्याधि, कोई ना कोई रोग कभी तो जीवन में आए ही होंगे, तो आपने कैसे ओवरकम किया और परमात्मा की मदद का कोई अनुभव आप इसमें सुनाइए हमें।
पहली तो बात यह है कि शरीर रोगी है, मैं रोगी नहीं हूं। ये मेरी मोटर है, डॉक्टर के पास रिपेयर कराने के लिए भेज रही हूं। मैकेनिक को, मतलब टूटी हुई कार ही तो मैकेनिक के पास जाएगी, अच्छी कार थोड़ी दी जाती है। तो जरूर कुछ खराबी है तो वो ठीक करेगा। तो ये दर्जी कपड़ा रिपेयर करेगा तो स्टिचेस तो लगेंगे। तो ये नहीं रहा कि ये रोग क्यों हुआ मुझे, प्रकृति का हिसाब किताब है। कभी किसी भी प्रकार का कोई भी रोग होता है तो मेरे को, यानी मैं हॉस्पिटल में जा रही हूं ये कभी संकल्प नहीं आया। जाना तो पड़ा, परंतु मुझे ये था कि हार्ट का था थोड़ा, तो मेरे को यह था कि मैं ये हॉस्पिटल नहीं है, परंतु ये डॉक्टर देखना चाहते हैं कि मेरे हार्ट में गॉड कहाँ बैठा है। ऑपरेशन होगा भी सही तो ये देखेगा कि परमात्मा मेरे हृदय में कहाँ बैठा है। तो ये ड्रेस रिपेयर इंस्टीट्यूट में जा रही हूँ। अच्छा, तो 2 दिन के बाद, ऑपरेशन के बाद, मैं बहुत अच्छी तरह से ऐसे तैयार होके बैठी थी। डॉक्टर आया, कहा, मैंने कहा गुड मॉर्निंग डॉक्टर, हाउ आर यू, कहा वी हैव कम टू आस्क यू हाउ आर यू, आई सेड आई एम वेरी फाइन। तो हम हमेशा ब्लेसिंग देते हैं, थोड़ा स्वीट देते हैं, तो उनको ब्लेसिंग दिया, थोड़ा बात किया। वो रोज नर्सेस डॉक्टर आते थे ब्लेसिंग लेने के लिए अथवा कुछ ना कुछ बात सुनने के लिए। फिर कहा कि आप हमारे डॉक्टर्स को अपने सेंटर पर बुलाओ। हमने कहा आप अरेंज करो। तो हार्ट स्पेशलिस्ट ने 300 डॉक्टर्स बुलाए हमारे सेंटर पर, पहला प्रोग्राम हुआ। थोड़े समय के बाद फिर चेकिंग के लिए जाना था, तो हॉस्पिटल वाले डॉक्टर्स ने कहा आप दूसरा प्रोग्राम कब रखने वाली है, हमको आप जरूर बुलाइए। तो ये है, फियर नहीं था, टेंशन नहीं थी, ये नहीं समझा, ऑपरेशन तो नाम शब्द भी नहीं था, रिपेयर करा रहे हैं बॉडी को। क्योंकि ये तो मुझे मालूम है कि ऑफ कोर्स अगर कोई चीज रिपेयर करनी है तो मैकेनिक ही रिपेयर करेगा, टेलर नहीं करेगा, समझा। तो इसीलिए कोई बात नहीं, कोई बात आई तो उसको कृपया करा लिया।
और दीदी ऐसा कोई अनुभव जहाँ परमात्मा की मदद का, ऑल्दो इसमें भी है लेकिन और कोई बात जब जीवन में आई और आपने बहुत अच्छा अनुभव किया?
बढ़िया बढ़िया अनुभव है। मैं इज़राइल गई थी, लंदन में मैं 50 साल विदेश में रही हूँ, 74 में गई और एक साल पहले हुआ आई, समझो 1.5 साल हो गया, तो 50 ईयर्स विदेश में रही। तो बताया ना बहुत कंट्रीज में जाना हुआ। तो अर्ली 80 की बात है, मैं दुबई गई तो मेरे पासपोर्ट पर इज़राइल का स्टैंप लगा हुआ था। मैं जैसे ही पहुंची, इमिग्रेशन वाले ने कहा तुम नहीं जा सकती हो बाहर। मैंने कहा क्यों नहीं जा सकती, मेरे को वीजा का पेपर है। कहा नहीं, आपके पासपोर्ट पर इज़राइल की स्टैंप है। तो वो तो दुश्मनी कंट्री थी, दुश्मन थे। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आप मेरे साथ एक व्यक्ति भेजो, गार्ड सिपाही भेजो, बाहर मेरे लिए वेट कर रहे हैं, तो मैं कम से उनको बता के तो आऊँ, मेरा पासपोर्ट आपके पास है, लगेज यहीं रखा हुआ है, मैं उनको बता के आऊँ कि मुझे वापस जाना है आज। तो वहाँ पर जो लेने आए थे भाई बहने, उनमें से एक का दोस्त, ये फ्राइडे था, फ्राइडे मुस्लिम कंट्रीज में हॉलीडे होता है, संडे होता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो होटल बुक किया हुआ है, इतने सारे प्रोग्राम रखे हुए हैं, आप वापस कैसे जा सकती हैं? तो मैंने बताया पासपोर्ट की प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं इंडियन, उस समय मेरा इंडियन पासपोर्ट था, अब तो ब्रिटिश पासपोर्ट है पर उस समय इंडियन पासपोर्ट था। उन्होंने कहा ठीक है, आज है तो फ्राइडे, मैं अपने दोस्त को फोन करता हूँ, वो मदद करे। तो वो इतने, मतलब आपसी फ्रेंडशिप थी, तो एम्बेसडर अपना बॉक्स लेकर, अपनी अटैची लेकर के, स्टैंप लेकर के आए और फिर कहा कि आप अंदर जाओ, बेशक ये मेरा फ़ोन नंबर है, आप अपना फ़ोन दो, मैं आपको कांटेक्ट करूँगा। उन्होंने मुझे मेरा फ़ोटो खिंचवाया, मेरा नया पासपोर्ट बनाया, इंडियन पासपोर्ट, ओल्ड पासपोर्ट उन्होंने ले लिया, नया इंडियन पासपोर्ट से मैं बाहर आ गई, सारा प्रोग्राम हो गया। दूसरी बारी का विशेष अनुभव है, मैं लंदन में थी तो जब भी कोई ये अपने एम्बेसडर आते थे, हम हमेशा ग्रीट करने जाते थे। तो मैं ग्रीट करने गई अपनी एक ईरानियन बहन के साथ, हमारे पास मुस्लिम ईरानियन सब लगवाते हैं। तो एम्बेसडर कहते हैं, देख के ही मुझे हेलो किया, थोड़ी बातचीत की, तो कहा एक बात आपसे पूछूं। मैंने कहा पूछिए, मैंने कहा कोई ज्ञान की बात पूछते होंगे। कहा कि आपका ट्रक क्यों रुक गया है, आपका ट्रक रुक गया। मैंने कहा मैं ट्रक में नहीं आई हूँ, मैं तो बहन के साथ कार में आई हूँ। कहा नहीं, आपका ट्रक स्टक है। मैंने कहा क्या मतलब? कहा कल रात में मैंने सपना देखा कि आप ट्रैवल कर रही हैं और आपके पास ट्रक है, वो दूध से भरा हुआ है और साथ में मिठाई है, तो आप वो बांट रही हैं जगह जगह, वो ट्रक स्टक हो गया है, तो आप मिठाई नहीं बांट सकती, दूध नहीं बांट सकती। तो मैंने सोचा कि बराबर बाबा का कुछ इशारा है, हम मेरे को आया बराबर। मैंने कहा हाँ, मेरा ट्रक रुक गया है, ट्रैवल रुक गई है, ट्रक नहीं रुका है, ट्रैवल रुक सकती है, मेरा नया पासपोर्ट बनना है। और मैंने ये पुराने पासपोर्ट में मेरी 10 ईयर्स की स्टैंप है अमेरिका जाने की, अब नया पासपोर्ट बनेगा तो पुराना को कट कर देते हैं, वो रफ हो जाता है, वो नहीं यूज होता। तो मुझे नया पासपोर्ट जो बने तो पुराने को आप जो है वो रिजेक्ट नहीं होवे। उन्होंने कहा कोई बड़ी बात नहीं। उन्होंने मुझे नया पासपोर्ट दे दिया तो मुझे ट्रैवल करने में और अपना दूसरा पासपोर्ट यूज करने में, जब तक मैं ब्रिटिश पासपोर्ट बनाऊं, तो दूसरी मदद मिली। ऐसे कितनी मदद मिली है और भी पासपोर्ट की कहानी है एक बारी पुलिस ने हेल्प की थी, पासपोर्ट मेरा गुम हो गया था, मिसप्लेस हो गया था, और मुझे दिल्ली कॉन्फ्रेंस में आना था। सवेरे 6 बजे पुलिस मतलब पुलिस का मेन व्यक्ति एम्बेसी में फोन किया कि प्लीज आप इनका पासपोर्ट ब्रिटिश एम्बेसी में आज ही बना के दो। मैं गई, 1 बजे से पहले पहुंचना था, 15 मिनट पहले पहुंची। उस बहन ने मेरे फॉर्म भरे, सब कुछ तैयार करके मेरे को नया पासपोर्ट दे दिया, ब्रिटिश पासपोर्ट। ये ऐसे तो बहुत कर,
जब हमारे इंटेंशंस राइट होते हैं तो हमें परमात्मा की और सर्व की मदद बहुत सहज ही मिलती रहती है। तो दीदी आपसे सुनना तो बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है सुनते ही रहें, बहुत सुंदर अनुभव हैं आपके। और सभी के कुछ प्रश्न भी अभी बाकी हैं।
क्योंकि श्रेष्ठ कर्म का फल तो मिलता ही है बराबर, भावना श्रेष्ठ है तो कामना श्रेष्ठ है तो मदद भी मिलती है,
तो मदद मिलती ही है। तो दीदी एक आखिरी प्रश्न के साथ हम सेशन एंड करेंगे कि हमने राजयोग का कोर्स जो सवेरे होता है उसमें आत्मा के बारे में सुना, पर अभी इस विषय पर और क्लैरिटी चाहिए कि आत्मा परमात्मा का अंश है या वंश है, और मोक्ष होता है या मुक्ति होती है।
अच्छा, आत्मा 3 चीज इटर्नल हैं, आत्मा, प्रकृति और परमात्मा। आत्मा को परमात्मा ने घड़ा नहीं है, न शरीर को घड़ा है। परम पिता परम आत्मा भी आत्मा है, पर अंतर यह है कि हम आत्माएं जन्म मरण के चक्कर में आती हैं, परमात्मा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। उसको शरीर नहीं है, निराकार हैं, उनका नाम कल्याणकारी ज्योत स्वरूप है, जिसकी यादगार मंदिर में ज्योतिर्लिंगम है, उनको शिव कहते हैं। शिव शंभु स्वयं धरती पर अवतरित होते हैं पर जन्म नहीं लेते, जैसे कि गीता में कहा है, अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यम तन आश्रतम, मूढ़मति मुझे न पहचान कर तुच्छ समझ कर गाली देते हैं। मैं पर काया में प्रवेश करता हूं, मेरी अपनी काया नहीं है। तो परमात्मा साधारण तन में प्रवेश करके फिर जो ज्ञान सुनाते हैं तो उसमें ये पहचान देते हैं कि तुम आत्मा अविनाशी हो, विनाश नहीं होती हो, परमात्मा में समाती नहीं हो, लाइट में लाइट मर्ज नहीं होती। परंतु जब बड़ी लाइट जग रही होती है, मानो सूर्य चढ़ा हुआ है, अब 500 अगरबत्ती जला के 5000 अगरबत्ती जला के अपनी छत पर रख दो, आपको लाइट दिखाई पड़ेगी? लाइट मर्ज हो गई उस लाइट में। मोमबत्ती वापस उठाओ, दीवा जग ही रहा है। तो आत्माएं परम धाम में, जिसको हम जो हमारा घर है, जिसको ब्रह्मलोक कहते हैं, मुक्ति धाम कहते हैं, परम धाम कहते हैं, अखंड ज्योति महातत्व कहते हैं, शिवलोक कहते हैं, बहुत नाम है विशेषता के आधार पर। तो आत्माएं वहां रहती हैं क्योंकि आत्मा भी ज्योत है, क्योंकि ये 5 तत्व की लिमिटेशन है, 5ों एलिमेंट्स की एनर्जी लेवल का शरीर बनता है। आत्मा प्रकृति से नहीं बनती, आत्मा ने शरीर छोड़ा, ये कभी नहीं कहते शरीर ने आत्मा छोड़ी। तो आत्मा जो कर्मों के बंधन है परमात्मा उनसे मुक्त करता है। इसीलिए जीवन में रहते हुए मुक्त होना पवित्रता सुख शांति प्रेम आनंद शक्ति सत्यता का संपन्न मूर्त बनना उसको जीवन मुक्त कहते हैं, अमर कहते हैं। देवताओं को अमर कहते हैं, परंतु अगर अमर मरते नहीं तो आज रामचंद्र जी श्री कृष्ण जी यहां होते, आज सब देवता यहां होते, परंतु उनको मरने का डर नहीं रहता है क्योंकि आत्मा ने शरीर छोड़ा। मौत क्या है? चेंज ऑफ चार थिंग, चेंज ऑफ ड्रेस, शरीर बदली हो गया, फिर चेंज ऑफ एड्रेस, स्थान बदली हो गया, फिर चेंज ऑफ रोल, भाई यहां ग्रैंड फादर था, ग्रैंड मदर था, बहुत जिम्मेवारी थी, वहां बेबी बन गया। फोर्थ चेंज ऑफ कंपनी, नई कंपनी में जॉब लगा है, अपने संस्कार अनुसार प्ले करेगा। तो आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आती है, कर्म अनुसार फल पाती है। कर्म फिलोसफी भी बहुत ऊंची चीज है और अच्छी चीज, समझने लायक चीज है। तो आत्मा कर्मों के बंधन में आती है, परमात्मा ज्ञान और योग के बल से कर्म बंधन मुक्त करते हैं। और मुक्ति जो है, आत्मा शांति धाम में वापस चली जाती है, जैसे कि रेस्ट करने गई, पर आती जरूर है वापस। अगर मुक्ति धाम में जाके वापस नहीं आती तो पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है? कहां से आत्माएं आ रही है और क्यों आई? क्या वहां संतुष्ट नहीं थी क्या? पर आत्मा की विशेषता है अपनी जो क्वालिटीज हैं उसको एक्सप्रेस करे, एक्सपीरियंस करे। तो सोल शरीर लेती है छोड़ती है, पर पशु नहीं बनती। कीड़ा मकोड़ा सर्प बिच्छू गधा कुत्ता ये नहीं बनती है। ये तो मनुष्यों ने डरा दिया कि पशु योनि में चले जाओगे, 84 लाख योनियां ले लेंगे। अगर 84 लाख योनि के बाद इंसान ने शरीर लिया तो फिर हेल्दी होना चाहिए ना, सुखी होना चाहिए ना। एक जन्म का पाप कर्म 84 लाख योनियां कितने साल भोगना भोगी जेल में, और फिर भी यहां पर अंधा लंगड़ा कूड़ा ऐसा ही रिक्शा चला रहे हैं, कोई गधे की तरह घोड़े की तरह चलाना पड़ता है। 4 सूटकेस भी रख दिए, बच्चों सहित बैठ गए और एक वो व्यक्ति खींच के ले जा रहे। तो मनुष्य के कर्म के अनुसार या उनका जीवन ऐसे बनता है, परंतु मनुष्य पशु योनि में नहीं जाता, बुद्धि कमजोर हो जाती है। ये डर पैदा किया था कि पाप कर्म ना करें।
थैंक यू सो मच दीदी, आपने हमें बहुत एनलाइटन किया। बहुत सारे जो यहाँ अभी तक डाउट्स रह गए थे, मुझे लगता है सभी के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए। तो हम दीदी को यस कह के थैंक यू करें, एक बार आप सभी थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू दीदी।
एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है, 5 मिनट में बताती हूँ, कि जो अच्छे काम कर रहे हैं वो दुखी हो रहे हैं, जो बुरे काम कर रहे हैं वो आनंद मौज मना रहे हैं। ये क्या कर्मों का हिसाब किताब? तो क्या भगवान उनको दुख दे रहे हैं और वो सुख दे रहे हैं? बुरे कर्म का फल सुख नहीं है। 3 तरह के कर्म होते हैं, इंस्टेंट कर्म, शॉर्ट टर्म कर्म और लॉन्ग टर्म कर्म। तो एक ही समय पर, एक ही वीकेंड पर आपने फ्लावर्स लगाए, खिल जाएंगे, 3 महीने के अंदर फ्लावर्स सूखे। अच्छा, आपने सब्जी बोई, 4 महीना लगा, 6 महीने लगा, अनाज बोया थोड़ा और टाइम लगा, पर पेड़ लगाया 6 साल 8 साल के बाद फल मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कर्म की बात है। लॉन्ग टर्म फल माना जरूरी नहीं कि उसी जन्म में फल हो, दूसरे जन्म में तीसरे जन्म में भी फल मिलता है। एक छोटी सी कहानी है। एक बार दो छोटे बच्चे पड़ोसी थे, एक बहुत शाहूकार के घर में पैदा हुआ और दूसरा गरीब के घर में पैदा हुआ।
इस उम्र में इतने रात को भी दीदी कैसे हमारे लिए समय निकाल कर एक माँ के समान हम सबकी पालना कर रही है, सबको फील हो रहा है ना जैसे घर के बड़े, माँ हमारी सबकी अंदर से हमको भरपूर कर रहे हैं।
अब दोनों बच्चे फ्रेंड्स थे, मतलब बच्चों में तो कोई भेदभाव नहीं है गरीब शाहूकार का, पर वो दूसरा जो गरीब बच्चा था उसके पेरेंट्स भक्त थे, मंदिर में जाना, सफाई करना, सेवा करना और जो पैसा है उसमें से दान करना। और जो शाहूकार का बच्चा था पैसा बहुत था, रॉन्ग एज उसमें चला गया, संग में चला गया। वो उसको कहता था अरे तुम्हारे पास पैसा नहीं है, मेरे से पैसा लो ना, मैं टिकट देता हूँ, मेरे साथ सिनेमा चलो, मेरे साथ वहाँ चलो। वो कहता था मैं नहीं करना चाहता। एक दिन क्या हुआ, दोनों ने टाइम फिक्स किया था कि हम इस जगह पर मिलेंगे। तो वो जो रॉन्ग जगह गया था वो फ्रेंड नाराज हो गई या वैश्य नाराज हो गई, जो भी कुछ था वो जल्दी आ गया, वेट करने लगा अपने फ्रेंड की। टाइम हुआ आया नहीं, बोर हो गया तो क्या करूं, तो उसने एक वहाँ आयरन रॉड रखा था, वह पेड़ के नीचे ही था, खोदना शुरू किया टाइम बिताने के लिए। उसको सेंस लगा कि यहाँ पर कुछ है और स्पेड लेकर के आया, तेज चीज लेके आया शार्प। खोला तो एक मटका निकला आयरन उसका तांबे का, उसमें कोयले थे और कुछ गोल्डन गिन्नी थी। बड़ा खुश हो गया, इसका मतलब मैं अच्छे मार्ग पर चल रहा हूँ, भगवान ने मुझे गोल्डन गिल्ली दी। पर उसका दोस्त तो अभी तक आया नहीं, तो थोड़ी देर में देखा कि दूर से वो दोस्त लकड़ी लेकर के धीरे धीरे चल के आ रहा है, टांग पर पट्टी बंधी है। उसने कहा क्या हुआ तुमको? उसने कहा कि मैं मंदिर की सफाई कर रहा था, ऊपर से ईंट गिरी तो भगवान की दया हो गई, मेरे सिर पर नहीं गिरी, मैं बच गया, मेरे पैर पर लग गई। मैं धीरे धीरे आया, डॉक्टर से पट्टी बंधवाई, थोड़ा और आगे चला तो कांटों की झाड़ी थी, उसका एक लंबा किक्कर का कांटा चुभ गया, तो डबल दोनों पैर में चलना मुश्किल हो गया। इसलिए मैं धीरे धीरे चल के आया। उसने कहा देखा, तेरे को भगवान ने दंड दिया, तू नहीं ठीक मार्ग पर है, मेरे को इनाम मिला, मैंने गोल्ड को पाया। अब उसके मन में थोड़ा संशय हुआ कि ये मैं इतना अच्छा काम कर रहा था, परंतु कहा नहीं, भगवान ने बचाया मेरी लाइफ को, नहीं तो मैं खत्म हो जाता, सिर पर चोट लगती इलाज कौन कराता। इतने में उनका तीसरा दोस्त आ गया, वो था ज्योतिष विद्या का जानकार, और उनको कहा देखो ये भात देखा जिसको चोट लगी थी, कहा ये बड़ा फॉर्चुनेट है, इसका भाग्य बहुत ऊंचा है, और जिसको पैसा मिला था उसको कहा तुम मिस फॉर्चुनेट हो, तुमने बहुत फॉर्चून मिस किया है। उसने कहा तो रॉन्ग, तुम्हारी रेडिंग रॉन्ग, इसको तो मर जाता था कांटा चुभा, और मेरे को तो गोल्ड मिला, पत्थर चढ़ा, टांग टूटी, मैं तो हेल्दी हूं। उसने कहा कि मेरा एक दूसरा दोस्त पिछले जन्मों में भेजता है रिसेस में, तो हम चलो उसके पास चलते हैं। तो वो हिप्नोटिज्म से या कोई भी, तो दो तीन जन्म पीछे गया तो देखा कि वो दोनों दोस्त थे जो अच्छा गरीब घर में पैदा होता हुआ था, वो मिस यूज करता था अपनी स्किल्स को, स्पेशलिटीज को, और कईयों को मैनिपुलेट करके धन ले लेता था, धोखा देता था, बहुत शाहूकार हो गया। दूसरा रियल में शाहूकार था, गरीबों को दान करता था, स्कूल में मदद करता था, अनाथालय में मदद करता था। तो शरीर छोड़ते समय बड़े आराम से सेल्फ रिस्पेक्ट से शरीर छोड़ी, और जो बुरे काम करता था मरते समय बहुत पश्चाताप से शरीर छोड़ा, सारी रील सामने आई और प्रेयर की कि भगवान अब मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। तो उसने बताया, जो रिसेस इसने भेजा, आज के इस दिन में इसको फांसी मिलने वाली थी, पर फांसी के बदले सूली से कांटा हो गया, और तुमको जो है ये मटका पूरा मिलने वाला था, पर एवरी डे जो तुमने पाप किया उसकी सजा से वो कोयला हो गया और बाकी गोल्ड मिला। तो इसलिए पाप कर्म का फल दुख नहीं है, ये लॉन्ग टर्म की बात है। ओके, अभी समाप्त समय होता है।
जी दीदी, थैंक यू सो मच। आपने एक बहुत जरूरी टॉपिक कर्म सिद्धांत पर भी हमें एनलाइटन किया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी जोरदार तालियों से दीदी का शुक्रिया करेंगे। कुछ अनाउंसमेंट्स हैं मॉर्निंग के लिए। आज सवेरे भी आप सभी मॉर्निंग में आए थे 4:15 बजे 4:15 पर। कल भी सूरज भाई जी हमारे बीच में होंगे अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन के लिए, और उसके बाद 6:15 पर एक्सरसाइजेज होंगी, और 7:00 बहुत सुंदर सेशन 8 पावर्स पर रहेगा। तो कल सभी समय पर जरूर पहुंचे। आप सभी के लिए सर्टिफिकेट्स भी आए हैं, आप कॉन्फ्रेंस ऑफिस से कल प्राप्त कर सकते हैं 8 बजे के बाद में। किसी का एक प्रश्न और था कि हम 80G में टैक्स डिडक्शन के तहत हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं इन सेवाओं के लिए, तो आप भी कल कॉन्फ्रेंस ऑफिस में चुनेश भाई से मिल सकते हैं। ओम शांति। अभी हम सभी 2 मिनट साइलेंस में बैठ के फिर जाएंगे। 2 मिनट के लिए सभी बैठेंगे।